أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث آموزش فلسفہ کے درس نمبر 15 میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ اس درس کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل مطالب ہیں کہ یہ مطالب تمام فلسفی مطالب کی بنیاد ہیں. اگر ان کو سمجھنے میں خطا ہو جائے غلطی ہو جائے تو آپ جو نتیجہ لینا چاہیں گے اپنے استدلال سے فلسفی تفکر سے وہ بھی غلط ہوگا. جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ اگر آپ ہیگل کے فلسفے کو دیکھیں کانٹ کے فلسفے کو دیکھیں اور بھی اس طریقے سے بعض ویسٹ کے جو فلاسفر ہیں ان کی فلاسفی کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس بحث کے حل نہ ہونے کی وجہ نظر آئے گی کہ جو انہوں نے وہاں پر غلطیاں کی ہیں. بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ معقولات کی کتنی اقسام ہیں اور ہم نے معقولات کی تین اقسام بیان کی تھی. معقولات اولا جس کو مفاہیم ماہوی کہتے ہیں, معقولات ثانیہ اور پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا, معقولات ثانیہ منطقیہ اور معقولات ثانیہ فلسفیہ. اب چونکہ اس کی ساری تفصیلات اس کا انگلش کا جو ٹرم ہے وہ ساری بیان کر دی تھی, تکرار یہاں پر کرنا مقصود نہیں ہے. اس کے بعد جو ہم بحث میں وارد ہوئے تھے تقریباً یہ بحث ختم ہو گئی تھی ہماری کہ معقولات کی یہ جو تین قسمیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں. تو مختلف خصوصیات آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان ہو گئی تھیں, سب کو یہاں پر بیان نہیں کرنا. چوتھی خصوصیت آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئی تھی, فقط ایک دو نقطے کو بیان کرنے کی خاطر یہاں پر ہم اس کو دوبارہ بیان کرتے ہیں اور جو نکات اس کے اندر موجود ہیں اس کو بیان کر کے اگلے مطلب میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. چوتھی خصوصیت جو ہے وہ کیا تھی, وہ اس طریقے سے یوں بیان کی گئی تھی کہ فلسفی مفاہیم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے مقابل میں جزئی تصورات یا جزئی مفاہیم نہیں ہیں. کہ اس کا جو مفاہیم جزئی نہیں پائے جاتے اس سے پہلے, یعنی مفہوم فلسفی سے پہلے جزئی مفہوم نہیں ہے. کہ پچھلے درسوں میں آپ کو تفصیل سے اس کی جو ہے مطالب جو ہے وہ بیان کر دیے گئے تھے. یعنی کیا مطلب, خود ہی تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں آگے چل کے. یوں فرماتے ہیں کہ مثلا ذہن علیت کی ایک جزئی صورت رکھتا ہو اور ایک کلی مفہوم اس طرح نہیں ہے. یعنی آپ کے ذہن میں ایک علت کا مفہوم ہو اور وہ مفہوم آپ یوں کہہ رہے ہوں کہ یہ جو علت کا مفہوم ہے یہ جزئی ہے اور یہ کیا ہے کلی ہے. نہ, علیت کا مفہوم کلی ہے. یعنی خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فلسفی مفاہیم ہمیشہ کلی ہوتے ہیں, اور جب یہ ہمیشہ کلی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفی مفاہیم اس سے پہلے جزئی مفہوم نہیں ہوتا. مفاہیم ماہوی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ مفہوم کلی کہ جس کے مقابل میں یا جس سے پہلے ایک تصور حسی یا ایک تصور خیالی یا ایک تصور وہمی موجود ہو وہ مفہوم ماہوی کہلائے گا. کیونکہ ہم نے مفہوم ماہوی جب ہم نے مفہوم کی اقسام پڑھی تھی جس میں ہم نے مفہوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا, مفہوم یا جزئی ہوتا ہے مفہوم یا کلی ہوتا ہے, اور پھر ہم نے آ کر جزئی کی اقسام بیان کی تھی, اور پھر کلی پہ جب ہماری بات آئی تھی تو اس بات کا تذکر دیا تھا کہ محسوسات کے اندر کیا ہوتا ہے, کلی مفہوم اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے حسی صورت یا حسی مفہوم موجود ہو یا خیالی مفہوم جو ہے وہ موجود ہو. یعنی آپ حس کریں گے پھر وہ خیال میں آئے گی और फिर उसके बाद वो क्या होता है, कुल्ली मफहूम में तब्दील होता है कि इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो गुजर चुकी है आकर। बस मफहूम माहवी उसकी खसूसियत ये है कि ये कहां से गुजर के आता है, तसव्वुर जुज़ई और तसव्वुर ख्याली से। और तसव्वुर जुज़ई और तसव्वुर ख्याली ये क्या है, मफहूम जुज़ई की अकसाम हैं या उसके मरातिब में से हैं। तो बस मफहूम माहवी हर वो मफहूम के ये एक अलामत बयान की थी, तफसील से भी बात हुई थी, मैं फकत चूंकि फासला ज्यादा आ गया है इसको तकरार कर रहा हूं और एक नुक्ता यहां पर बयान करना चाह रहा हूं, उस वजह से यहां पर इस मतलब को दोबारा बयान किया जा रहा है कि हर वो मफहूम के जो हिस और ख्याल से गुजर कर आए वो मफहूम महोवी होगा, यानी अगर मफहूम कुल्ली बन जाए। लेकिन फरमाया था कि यूं नहीं हम कह सकते कि हर मफहूम माहवी से पहले मफहूम जुज़ई होता है, ना ऐसा नहीं है। दुरुस्त है, एक अलामत के तौर पर यूं तो हम इस्तेफादा कर सकते हैं कि अगर हमें मफहूम कुल्ली मिलता है और उस मफहूम कुल्ली के मराहिल जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस मफहूम कुल्ली ने मरहलाए हिस और मरहलाए ख्याल तय करके यहां पर पहुंचा है, तो हम इस बात को अलामत समझे कि यह मफहूम क्या है, माहवी है, माहियत में से है। लेकिन यूं कानून कुल्ली नहीं बनाएंगे कि जो भी मफहूम माहवी होगा, जो भी माहियात से ताल्लुक रखने वाला मफहूम होगा, वो हमेशा अपने पहले क्या है, जुज़ई मफहूम रखता होगा, ना ये कायदा कुल्ली हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि फरमाते हैं कि हमारे पास ऐसे मफहूम माहवी मौजूद हैं कि जो कुल्ली तो हैं लेकिन उनसे पहले तसव्वुर हिस्सी या तसव्वुर ख्याली या तसव्वुर वहमी मौजूद नहीं है। और वो क्या है, इन्होंने मिसाल के तौर पे बयान की थी, मिसाल के तौर पे उन्होंने नफ्स की मिसाल दी थी कि हम क्या करते हैं कि हम इल्म हुजूरी की बहस में इस बहस को पढ़ के आए हैं कि हम जो अपने नफ्स के बारे में इल्म पैदा करते हैं, अपने होने को दर्क करते हैं, अपने नफ्स अपनी जात को पाते हैं, ये कौन से इल्म के तवस्सुत से है, इल्म हुजूरी के जरिए। और हम क्या है, इल्म हुजूरी के जरिए अपने नफ्स को पाते हैं और एक मफहूम नफ्स हमारा जहन उससे बना लेता है डायरेक्ट, मराहिल तय नहीं होते उसके अंदर हिस्सी और ख्याली जैसे। जैसे ही आपने अपने नफ्स को इल्म हुजूरी के जरिए पाया, आपका जहन एक कुल्ली मफहूम बना लेता है नफ्स, वो चाहे अब आपका हो या किसी और का हो। तो फरमाते हैं कि ये जो मफहूम नफ्स लिया है ये मफहूम माहवी है, क्योंकि इसके ऊपर जो तारीफ और खसूसियत है वो मफहूम माहवी की सिद्ध करती है कि तफसील से बयान कर दिया है, रुजू करेंगे वहां पर जाके, मफहूम माहवी है लेकिन सूरत ज़हनी ये जुज़ई नहीं रखता। यानी जब आपने इसको मफहूम कुल्ली बनाया है, मफहूम कुल्ली से पहले ये जुज़ई का मरहला तय करके नहीं आया। तो बस हम इस वजह से मफहूम माहवी के अंदर कायदा कुल्ली नहीं बना सकते कि जो भी मफहूम माहवी होगा वो क्या है, अपने पहले क्या है या अपने मुकाबले में क्या है, वो मफहूम जुज़ई रखता होगा। दुरुस्त है, ये एक मतलब जो है वो जनाब आयतुल्लाह मिसबाह हफ़ज़ाउल्लाह ने जो है वो बयान फरमाया है। लेकिन यहां पर एक आप यूं कह लें कि मुनाक्षा मौजूद है, एक एतराज जहन में आता है, वो ये है कि आप जब मफाहीम कुल्ली की वजाहत हमारे लिए बयान फरमा रहे थे ना, उसमें उसकी बात हो रही थी इल्म हुसूली व इल्म हुजूरी की, और फिर उसके बाद हमने आकर मफाहीम कुल्ली की जुज़ई के अकसाम बयान की, और अकसाम बयान करने के बाद फिर हम क्या आते हैं, मफहूम कुल्ली की तरफ आते हैं। जब हम मफहूम जुज़ई की अकसाम बयान कर रहे थे, तसव्वुर जुज़ई की, तो वहां पर हमने एक कहा था कि तसव्वुर जुज़ई उनमें से एक तसव्वुर हिस्सी है और एक तसव्वुर ख्याली है और तीसरा क्या है, तसव्वुर वहमी है। तो तसव्वुर वहमी के बारे में आयतुल्लाह मिस्बाह हाफ़ज़हुल्लाह ने फरमाया कि हकीकत में ये अक्ल ही का एक मर्तबा है, लेकिन फिर भी एक माना में इस तसव्वुर वहमी को कबूल किया था। वो कौन सा है? वो ये है कि सफा नंबर, फारसी किताब के मुताबिक सफा नंबर 187, इसके आखिरी पैरे के अंदर यूं आकर आयतुल्ला मिसबा हाफजहुल्ला जो है वो बयान करते हैं कि आंचे रामी थवान बेउनवान खासी अज तसव्वुर जुज़ई पजीरोफ्त तसव्वुरी अस्त के अज हालात नफसानी हासिल में शब्द। तसव्वुर वहमी पे इन्होंने तफसील से गुफ्तगू की थी ऊपर, चूंकि ये दर्स में तफसील गुजर चुकी है, तकरार नहीं करना। तो आखिर में आकर आयतुल्ला मिसबा ये फरमाते हैं कि हम तसव्वुर वहमी को एक माना में कबूल कर सकते हैं कि ये क्या हो, अलग एक किस्म बने तसव्वुर हिस्सी के मुकाबले में, तसव्वुर ख्याली के मुकाबले में और तसव्वुर अकली के मुकाबले में एक अलग किस्म बने। कब हम इसको कबूल कर सकते हैं? इस माना में, कब के जब हम अपने नफसानी हालात के बारे में इल्म हासिल करते हैं, दुरुस्त है, तो अब वो जो सूरत हमारे जहन में आती है वो क्या है? वो तकरीबन ख्याल की मानिंद है। देखें, काबिल याद आवरी अस्त, ये कहते हैं कि आंचेरा मीथवान, यानी वो चीज के जिसको हम तसव्वुर जुज़ई की एक खास किस्म के उन्वान से कबूल कर सकते हैं, वो तसव्वुर है कि जो क्या है नफसानी हालात से हासिल होते हैं या हासिल होता है और या काबिल याद आवरी है, यानी आप उस हालत को दोबारा याद कर सकते हैं। तफसील से बात हुई थी इस इबारत की वजाहत में। वह शबी है तसव्वुर ख्याली निस्बत में तसव्वुर हिस्सी में बाशद, यानी ये तकरीबन क्या है, वही शबी है ख्याल की तरह, लेकिन ख्याल नहीं है क्योंकि तफसील मैंने पहले बयान कर दी, दोबारा तकरार नहीं करना है इसके आकर। बस यहां क्या कहना चाहते हैं और हमारा इतराज क्या बन सकता है अल्लामा की उस इबारत के ऊपर, वो ये है, अल्लामा यहां पर यह बयान फरमा रहे हैं कि हालात नफसानी के जरिए, हालात नफसानी के बारे में जो आप इल्म हासिल करते हैं वो इल्म क्या है, मसबूक बे जुज़ई होता है, यानी पहले जुज़ई सूरत जहन में आती है फिर उसके बाद हमारा नफ्स हमारी अकल उससे कुली मफहूम बनाता है। यानी आपने जब एक डरावनी एक चीज देखी तो आपके अंदर खौफ की एक हालत पैदा हुई, वो खौफ की जो आपके अंदर हालत पैदा हुई है उस डरावनी चीज को देखकर, तो वो जब हालत मौजूद है आपकी वो क्या है, वो आप इल्मे हुजूरी के जरिए उसको हासिल कर रहे हैं और वो जुज़ई है। क्यों? क्योंकि आप अपने तर्स के बारे में, अपने खौफ के बारे में जो है वो इल्म हासिल कर रहे हैं, तो ये मोरिद क्या है, जुज़ई है। फिर हमारा अकल क्या, हमारा जहन क्या करता है, इस जुज़ई खौफ के तसव्वुर को तब्दील कर देता है किसमें, कुल्ली में। आप एक खौफ का मफहूम बना देते हैं, अब वो मेरा खौफ हो या किसी और का खौफ हो। तो इसका मतलब यह है कि नफसानी हालात, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गमी हो चाहे वो खौफ हो, जो भी चीज हो, वो जुज़ई मफहूम अपने पहले रखता है। तो जब हालात नफसानी में ये कैफियत पाई जाती है तो फिर आप आकर यहां खुद नफ्स के बारे में क्यों कह रहे हैं कि खुद नफ्स का जो मफहूम है वो खुली तो है लेकिन इससे पहले जुज़ई मफहूम नहीं है। हालात नफ्स के बारे में तो कबूल कर रहे हैं आप, नफ्स के बारे में आप क्यों कबूल नहीं कर रहे? तो ये एक एतराज है मैंने जब रुजू किया जनाब उस्ताद मीर सिपाह के दुरूस की तरफ, तो वो यूं इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आयतुल्ला मिसबाह की खिदमत में जो है वो हाजिर हुआ और सवाल किया यही कि आप जब ये नज़र दे रहे हैं तो ये कैसे बात दुरुस्त होगी, हालांकि हम देखते हैं कि जब मैं अपने आप को पा रहा हूँ, अपनी ज़ात को दर कर रहा हूँ, तो वो जुज़ई मोरद है। उसके बाद फिर हमारा जहन जो है, हमारी अकल जो है, उससे कुल्ली मफहूम निकाल रही है नफ्स। अब वो नफ्स चाहे मेरा हो या आपका या किसी और का हो। तो जब ये एतराज किया तो जनाब उस्ताद मीर सिपा फरमाते हैं कि उनके जहन में, चूंकि जहरी बात है अरसा पहले किताब उन्होंने लिखी थी, अब मतलब सारे हुजूर जहन तो नहीं होते, तो वो उनके मतलब जहन में नहीं था। और फिर उन्होंने आकर जवाब देने की जो कोशिश की तो उन्होंने तफकीक किया कि वो जो पहले बात हमने की थी, जो मैंने अभी इबारत आपके सामने पढ़ के सुनाई है, वो हालात नफ्स के बारे में है, और ये जो बात मैं कर रहा हूं ये खुद नफ्स के बारे में है। यानी खुद नफ्स का जो मफहूम है इससे पहले जुज़ई मफहूम नहीं है, और हालात नफ्स के अंदर जुज़ई मफहूम मौजूद होता है, जैसे मिसाल दी भी है उसकी। तो इस किस्म की उन्होंने तफकीक किए, लेकिन असातीद के जिन्होंने तदरीस किया है, जिनकी खिदमत में हम भी गए हैं और बाकी असातीद भी, वो आकर इस तफकीक को जो है वो कबूल नहीं करते कि नहीं एक ही चीज़ है, चाहे वो हालात नफ्स हो या नफ्स हो। बारा फिर भी आप भी तहकीक करें, जितनी मैंने तहकीक की है इसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि आगा मिसबाह ने किसी किताब में इसको वजाहत की हो या किसी उस्ताद ने इसका जवाब दिया हो, तो वो जवाब अगर आपको मिले तो हतमन इशारा कीजिएगा ताकि पता चल जाए। तो यहाँ तक बहस थी हमारी माकूलात की जो खसूसियात हैं उसके बारे में। इसके बाद एक और अहम तरीन बहस में दाखिल हो जाते हैं, वो है मफाहीम एतबारी, ड्राइवेटिव कंसेप्ट्स। एतबारी को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया वो ड्राइवेटिव है। एक दो और माना भी मैंने देखे थे लेकिन वो मुझे ज्यादा दकीक नहीं, गहरे नजर नहीं आए, मतलब को अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये तर्जमा मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई ये वाकई के करीब कर रहा है। जैसे पहले भी मैं अर्ज करता आ रहा हूं बार बार कि हम इनके माने डिक्शनरियों में तो जाके नहीं कर सकते। एक इस्तेला होती है, एक ऐसे लफ्ज का इंतखाब करना होता है जो करीब हो फलसफी माना को समझाने में, तो जब एतबारी माना की वजाहत हो जाएगी तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राइवेटिव जो लफ्ज है ये तकरीबन इसके करीब है कि जो हम यहाँ पर बयान करना चाह रहे हैं। मफाहिम एतबारी, मफाहिम एतबारी की बहस भी इंतहाई अहमियत की हामिल बहस है, और हमारी जिंदगी का जो दारो मदार है वो इसी एतबारी मफाहिम के ऊपर है। बशर की मारिफत के अंदर इन मफाहिम का बहुत बुनियादी किरदार है। अब हमने देखना यह है कि ये एतबारी मफाहिम, हमने जो तीन मफहूम की किस्में बयान की हैं माकूलात की, माकूलात उला यानी मफाहिम माहवी, मफाहिम फलसफी, मफाहिम मंतकी, ये जो मफाहिम एतबारी हैं ये उन तीन किस्मों में से किसी एक किस्म के जिमन में आएंगे या एक चौथी किस्म बनेगी जाकर। मसलन हम कहेंगे कि हमारे पास चार किस्म के मफहूम हैं, तीन ये हैं, चौथे मफहूम एतबारी हैं। जनाब आयतुल्ला मिसबाह फरमाते हैं कि हम पहले देखते हैं, पहले इस बात को बयान कर देते हैं कि एतबारी का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है फलसफे के अंदर या कहीं भी एतबारी का लफ्ज जब इस्तेमाल होता है ये मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है ऐसे लफ्जों में से नहीं है कि जिसका एक ही माना हो ना, इसके मुख्तलिफ मानी हैं और डिफरेंट हैं बिल्कुल। अगर इन मानी का तआरुफ ना हो किसी इंसान को, किसी मुहक्किक को, किसी मुफक्किर को, किसी फैलसूफ को, तो वो अपने नतीजे में गलतियां करेगा। और जैसा कि हुआ भी है, आप आगे चल के जब मुख्तलिफ किताबों का मुताला करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। तो मुख्तलिफ यहां पर इस्तेलाहात बयान करते हैं एतबारी की। फरमाते हैं पहली जो इस्तेलाह है, या पहली दूसरी जो कह रहा हूं, फकत एक नंबरिंग कर रहा हूं, वाहिला ऐसा नहीं है कि पहली ये है और दूसरी वो है ना। पहली जो यहां पर इस्तेलाह बयान करते हैं वो ये कि माकूलाते सानिया सारे के सारे मफाहीम एतबारी कहलाते हैं। यानी जो हम पीछे पीछे तीन किस्में पढ़ के आए हैं, हमने कहा था या मफाहीम माहौवी हैं, या मंतकी हैं, या फलसफी हैं। मफाहीम माहौवी, इनको मफहूम हकीकी कहा जाता है, और इसके मुकाबले में जो दो मफहूम हैं मंतकी और फलसफी, इनको एतबारी कहा जाता है। अब एतबारी का मतलब यहां पर यह नहीं है कि जो आगे चल के आने वाला है, कि एतबारी यानी घड़ा गया हो, अपनी तरफ से बनाया गया हो ना। एतबारी अपनी इस्तेलाह के अंदर है, और वो इस्तेलाह क्या है? एक ये है कि मफहूम फलसफी और मफहूम मंतकी, ये दोनों एतबारी मफाहीम है। एक ये इस्तेलाह है। दूसरी इस्तेला जो यहां पर बयान की गई है वो ये है कि हमारे पास बाज मफाहिम है कि आयतुल्ला मिसबाह जो हैं, आगे चल के इनके ऊपर मुख्तसर बात करेंगे लेकिन थोड़ी तफसीली उसमें मतालिब आएंगे आकर। हमारे पास दो किस्म के मफहूम पाए जाते हैं, एक मफहूम अखलाकी हैं और बाज मफहूम कानूनी हैं, कि जिसको फारसी में हुकूकी कहा जाता है, कानूनी मफाहीम और अखलाकी मफाहीम। ये जो कानूनी और अखलाकी मफाहीम हैं, इनको भी एतबारी कहा जाता है। अब इनको एतबारी कहना और माकूलात सानिया को एतबारी कहना, ये दो अलग मेयार हैं। यानी अगर आप एक मेयार के तहत आकर फैसला करना चाहेंगे तो आप गलती में दो चार हो जाएंगे, आप सही नतीजा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि माकूलात सानिया को किस वजह से एतबारी कहा जाता है वो मिलाक और है, और कानूनी और अखलाकी मफाहिम को एतबारी कहा जाता है इसका मिलाक और है। बस इस मैदान में जो एतबारी का लफ्ज इस्तेमाल होगा उसका माना और होगा। और तीसरा जो माना है इसका, तीसरी जो इस्तेला एतबारी की पाई जाती है और ये उर्फ में राइज भी है, क्या? यानी ऐसे मफाहिम के जिनको घड़ा गया हो, जैसे मसलन भूत का एक मफहूम है, एतबारी है, बना दिया गया है, एतबार कर लिया गया है कि एक भूत है मसलन। अब ये भूत का जो मफहूम है इसको एतबारी कहते हैं। अब ये उर्फी माना में एतबारी है, ना तो कानूनी और अखलाकी मफाहीम में जो एतबारी है उस माना में भी नहीं है, और माकूलात सानिया में जो एतबारी कहा जाता है उस माना में भी नहीं है, बल्कि ये उर्फी उर्फ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बस अगर कोई उर्फ के माना को आकर अखलाक व कानून के मफाहीम में उसको समझ रहा होगा तो गलती करेगा, और इसी तरीके से अगर वो मफाहिम फलसफी व मंतकी में आकर उसको अप्लाई कर रहा होगा तो हतमन जो है वो गलती करेगा और नतीजा नहीं ले पाएगा, उसका तफक्कुर, उसका नतीजा जो है वो गलत हो जाएगा, उसका इस्तदलाल गलत होगा। तो आप कहते हैं कि ये जो तीसरी इस्तेला है इसको वहमियात भी कहते हैं, और जब हम तसव्वुर वहमी की बात कर रहे थे तो मैंने वहां पर इशारा किया था इस बात की तरफ कि वो जो फलसफे के अंदर वहम कहा जाता है वो और माना में है, और जो उर्फ में कहा जाता है वो क्या है? वो और माना में, वो यही है, उसको एतबारी भी कहेंगे। यानी जिसको घड़ दिया गया हो, जिसको बना दिया गया हो, जिसका कोई मिलाक ना हो अपनी तरफ से, वो वहमियात भी शुमार होता है, उसको एतबारी भी कहते हैं। बात वाजी होगी यहां तक? तीन इस्तेलाहें हो गई।
चौथी इस्तेला जो यहां पर बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जब आप फलसफे की बहस यानी जो हस्ती शनासी की बहस शुरू होगी, अंटोलॉजिकल जो मबाहिस हैं उनके ऊपर जब हम वारिद होंगे और उनको पढ़ेंगे जाकर, तो वहां हम जब बहस करेंगे कि वजूद और माहियत इनका आपस में क्या राबता है, वजूद असल है या माहियत, तो ये जो हम बहस करेंगे तो वहां एक इस्तेला इस्तेमाल होगी। हम वहां जाकर ये बात साबित करेंगे कि वजूद असील है और असल है, माहियत एतबारी है। अब फरमाते हैं कि यहां पर जो एतबारी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है और माना मुराद लिया जा रहा है वो पिछली इस्तेलाहों से फर्क करता है। अब कोई बंदा आकर इस असालतुल वजूद की बहस में, एतबारियत माहियत की बहस में जाकर अगर इस माना में जो है वो नहीं समझेगा, बल्कि पिछली बयान करदा कोई भी इस्तेला को मद्देनजर रखकर अगर नतीजा लेना शुरू कर देगा आकर, तो फिर हतमन वो गलती का शिकार हो जाएगा, नतीजा सही नहीं ले पाएगा। वाजे हो गई है। बस यहां तक इन्होंने आकर इस बात को यह समझाने को क्यों ये बयान कर रहे हैं, चूंकि बहुत सारे मुफक्किरीन ने आकर एतबारी का एक माना मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ एतराजात करने की कोशिश की है कि यह कैसे एतबारी हो सकता है, ये कैसे एतबारी हो सकता है, हालांकि इसमें तो यह माना नहीं पाया जाता। तो हम यही कह रहे माना नहीं पाया जाता, इस्तेलाह जो है वो अलग है इसकी। ये इस्तेलाहें जिक्र करने के बाद फिर जनाबे आयतुल्लाह मिसबाह आकर मुख्तसर सी वजाहत करते हैं कि अखलाकी और कानूनी मफाहीम कहते किसे हैं और इनको जो हम एतबारी कह रहे हैं उसका मिलाप क्या है, कि इसको फिर इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।